ब्रिटेन और जर्मनी इसराइल के पाश्विक हमलों के समर्थक हैं और इन देशों के विदेश मंत्रियों ने दावा किया है कि हमास ने पाश्विक तरीके से इसराइल पर हमला किया है और अभी भी इसराइल नागरिकों की हत्या के लिए रॉकेट फायर करता है और हमास को चाहिए कि वो अपने हथियारों को रख दे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इससे पहले सीएनएन से वार्ता में कहा था कि अगर गजा का एक भाग भी हमास के नियंत्रण में रहेगा तो दो देशों के समाधान का प्रस्ताव कभी भी व्यवहारिक नहीं हो सकता। जानकार हलकों का मानना है कि ब्रिटेन और जर्मनी भी अमेरिका के पिछलग्गू हैं और इन देशों ने युद्ध विराम कराने और शांति की दिशा में न केवल कोई प्रयास नहीं किया है बल्कि इसराइल के पाश्विक अपराधों को जारी रखने के लिए उसका समर्थन भी किया है। अलक्सा तूफान आरंभ होने के समय से ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर की अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की यात्रा को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इन देशों के नेता इसराइल को ढारस देने और अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए ही तेल अविव की यात्रा पर गए थे। रोचक बात यह है कि जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों का कहना है कि तुरंत युद्ध विराम से आत्मरक्षा के इसराइल के अधिकार की अनदेखी होती है तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर अतिग्रहणकारी को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है तो जिसकी मातृभूमि पर इसराइल ने अवैध व नाजायज तरीके से कब्जा किया है उसे अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष करने और अपनी रक्षा का अधिकार क्यों नहीं है। अगर वास्तव में ब्रिटेन और जर्मनी शांति के इच्छुक हैं तो उन्हें अधिग्रहण को समाप्त कराने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि स्थायी व टिकाऊ शांति स्थापित हो सके क्योंकि इसराइल का अधिग्रहण ही संकट की मूल जड़ है। जानकार हलकों का मानना है कि अधिग्रहणकारी का समर्थन और टिकाऊ शांति की बात करना घड़ियालू आंसू बहाने के समान है। अगर जर्मनी और ब्रिटेन वास्तव में मानवाधिकार के रक्षक हैं तो उन्हें इसराइल के पाश्विक हमलों की भर्त्सना करना चाहिए मगर एक बार भी उन्होंने इसराइल के पाश्विक हमलों की भर्त्सना तक नहीं की जबकि इसराइल के आतंकी व पाश्विक हमलों में शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 19,000 से अधिक हो चुकी है। और यही नहीं पिछले एक वर्ष के दौरान जर्मनी ने इसराइल के प्रति अपनी सैनिक सहायता को कई गुना बढ़ा दी है। इसी प्रकार जानकार हलकों का मानना है कि फिलिस्तीन में दो देशों या सरकारों के समाधान का प्रस्ताव कभी भी सफल नहीं होगा क्योंकि अगर इस प्रस्ताव को सफल होना था तो अब तक ये प्रस्ताव क्यों सफल नहीं हुआ। दो देशों के समाधान का प्रस्ताव मान लेने का मतलब फिलिस्तीनियों की मातृभूमि पर इसराइल के अवैध अस्तित्व को मान्यता देना और ये वो चीज है जिसे फिलिस्तीनी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी तरह जानकार हलकों का मानना है कि फिलिस्तीन में दो देशों या सरकारों का प्रस्ताव विश्व जनमत को धोखा देने और उसे चुप कराने का एक हथकंडा है और धीरे धीरे इसराइल गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीनियों की जमीनों को हड़पता जा रहा है और अब तक वो फिलिस्तीन की लगभग 80% जमीनों पर कब्जा कर चुका है और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो वो दिन अधिक दूर नहीं जब इसराइल फिलिस्तीनियों की शेष जमीनों पर भी कब्जा कर लेगा। जब फिलिस्तीनियों की जमीन ही नहीं बचेगी तो दो देश या सरकार कहाँ बनेंगे। बहरहाल फिलिस्तीन समस्या के समाधान का सबसे अच्छा मार्ग वो है जिसे इस्लामी गणतंत्र ईरान ने पेश किया है। ईरान का मानना है कि राष्ट्र संघ की निगरानी में फिलिस्तीन के समस्त मूल निवासियों की समृद्धि से रेफरेंडम कराया जाना चाहिए और वहां के मूल निवासी अपने भविष्य का निर्धारण करें। उल्लेखनीय है कि मूल निवासी में वहां के रहने वाले समस्त लोग शामिल हैं चाहे वे मुसलमान हों ईसाई हों या यहूदी। इसी प्रकार मूल निवासी में वे फिलिस्तीनी भी शामिल हैं जिन्हें इसराइल ने ताकत के बल पर दूसरे देशों में शरणार्थी का जीवन व्यतीत करने पर बाध्य कर दिया है।